का था, रूह वही, रूप नया।
आप सुनने जा रहे हैं कहानी अकेलापन और इसके लेखक हैं गी द मोपासा। क्यों चक्कर खा गए ना डियर? बात ही कुछ इस तरह की है। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं विक्षिप्त हो गया हूं। वैसे मैं कुछ सनकी तो जरूर हूं, यद्यपि उन वजहों से नहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हां, मैं शादी करना चाहता हूं। सच में, हालांकि शादी के विषय में मेरी ठोस मान्यताएं जरा भी तब्दील नहीं हुई हैं। मैं अब भी यही मानता हूं कि संभोग को विधि सम्मत रखना बेवकूफी है। बेशक 10 में से 8 शौहरों की बीवियां बेवफा ही होंगी। ऐसी स्थिति इस कारण है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को बेड़ी पहनाने की बेवकूफी की है। उस प्यार की स्वतंत्रता खोई जो संपूर्ण संसार में सबसे ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक बात है। और हां, उस रूमानी लुत्फ के पर कतर दिए जो हमारे भीतर समस्त स्त्रियों में रुचि लेने की हसरत को बनाए रखती हैं। और तब महज एक ही नारी के प्रेम में बंधे रहने की हैसियत मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अन्य सभी स्त्रियों को भी चाहूंगा ही। मेरी इच्छा तो इस तरह की है कि हजारों हाथ, हजारों होंठ, हजारों चेहरे हों, ताकि इन सुंदर प्राणियों को एक साथ एक ही पल में अपने आगोश में भर लूं। लेकिन फिर भी मैं शादी करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता कि कल से मेरी पत्नी बनने वाली वो स्त्री कैसी होगी। मैंने उसे महज 1 या 2 दफा ही देखा होगा। वो कुरूप नहीं है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। नाटी, गोरी और गोल मटोल है। कुछ दिनों बाद मेरे मन में किसी लंबी, स्याह और पतली स्त्री की इच्छा जागने लगेगी। वो रईस नहीं है, सामान्य परिवार से है, पूरी तौर पर मध्यम वर्गीय, एकदम शादी के लायक, लेकिन अच्छे या बुरे किसी अनोखे चारित्रिक लक्षण से कोसों दूर। उसके विषय में लोग कहते हैं, डायना बड़ी प्यारी लड़की है। कल के बाद वो कहेंगे, वो है ना रोमा, वो जो कुंवारी है, वो बेहद सुंदर है। मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि दुनिया में सर्वोत्तम सुंदर लड़की वही है जिससे शादी करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन कुछ ही वक्त गुजरने के पश्चात ये लगने लगेगा कि मैं तो सच में ही अन्य तमाम स्त्रियों को ज्यादा चाहता हूं। अब आप पूछेंगे कि तब मैं शादी कर ही क्यों रहा हूं। मैं नहीं जानता। इस अर्थहीन कार्य को करने के आग्रह का अनोखा और अविश्वसनीय कारण मुझे भी नहीं पता। महज शादी कर रहा हूं ताकि कुवारा ना घूमता रहूं। समझ में नहीं आता कि इसके अलावा और क्या कहूं, अपनी बात का स्पष्टीकरण कैसे करूं। रात में तन्हा रहना बर्दाश्त नहीं होता। किसी इंसान की समीपता की गहरी चाह होती है कि कोई मुझे भी स्पर्श करे, वो कुछ कहे, कुछ भी कहे। मैं उसकी नींद में खलल डालना चाहता हूं। उससे चाहे तर्कहीन अचानक कोई सवाल पूछना चाहता हूं, ताकि जवाब में कोई आवाज तो सुनाई दे, लगे कि घर भरा हुआ है, लगे कि कोई दूसरा प्राणी जाग रहा है, कोई दूसरा दिमाग चौकन्ना है। मैं चाहता हूं कि जब मैं बिस्तर से उठकर बत्ती जलाऊं तो पास में एक दूसरा मानव चेहरा नजर आए। शायद मुझे ये बताते हुए संकोच होता है कि मैं तन्हा नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी खतरे की आशंका से भयभीत हूं। कोई चोर डाकू घर में घुसे तो सही, मैं तो जरा भी डरे बिना उसका काम तमाम कर सकता हूं। भूत प्रेतों का मुझे कोई डर नहीं है और ऐसी शक्तियों में मैं कोई यकीन नहीं करता। मुर्दों से मुझे कोई खौफ नहीं आता। मेरे विचार से पृथ्वी से उठने के पश्चात वो पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। तुम सवाल करोगे तो फिर डर किसका है तुम्हें? हां हां हां
मैं खुद से भय खाता हूं। कोई कोई भय मुझे खाए जाता है। जहन पर एक खौफ तारी रहता है, किसी अबोध खौफ की विकराल सनसनी की आशंका से छा जाती है। मेरी बात पर चाहे जितना हंसो, लेकिन मेरा दुख खौफनाक है, असाध्य है। मैं दीवारों से, फर्नीचर से, रोज की चीजों से खौफ खा जाता हूं, जैसे जैसे वो कोई डरावनी जीव जंतु हो। अपनी आत्मा के भीतर दाखिल होती और पूरी चमड़ी को सहरा देती है कोई अनोखी सी बेचैनी। मैं उसे महसूस करता हूं, अपने इर्द गिर्द झांकता हूं तो वहां कुछ नजर नहीं आता। फिर भी मन डरता है कि वहां कोई है जो नजर आए, कुछ ऐसा हो जो मेरे मन में उतरे। मेरे डरने की इकलौती वजह यह है कि मैं अपने खौफ के कारण से भी अनभिज्ञ हूं। मैं जोर से कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अपने ही मुंह से निकली आवाज से डर जाता हूं। कमरे के भीतर चकराता रहता हूं, तभी एकाएक लगता है कि दरवाजे के पीछे, खिड़की की आड़ में, अलमारी के बगल में, बिस्तर पर कोई अजनबी है। जबकि मैं ठीक तरह से जानता हूं कि वहां कतई कुछ भी नहीं है। कभी कभी डरकर एकदम से पलट जाता हूं कि पीछे कोई है, जबकि मुझे पता है, बखूबी पता है कि वहां कोई नहीं है। ये सब देखकर मैं सिहर उठता हूं, मेरा दिल डूबने लगता है। तब मैं अपने कमरे में बंद हो जाता हूं, बिस्तर में घुस जाता हूं, रजाई में छिप जाता हूं। निराशा में लेटे हुए घंटों तक आंखें बंद किए पड़ा रहता हूं। मुझे पता है कि कमरे की बत्ती जल रही है और मुझे उसे बुझा देना चाहिए, लेकिन उठने का हौसला ही नहीं जुटा पाता। ऐसा पूर्व में कभी नहीं होता था। शांत मन से घर लौटता था। अपने कमरे में घूमते फिरते हुए मन की शांति में कोई व्यवधान महसूस नहीं करता था। किसी विवेक रहित ढीठता, घिनौने भय या किसी भी तरह की बीमारी की कोई आशंका नहीं थी मुझे। घने अंधेरे के घिराने के बाद भी मैं अपने कमरे का द्वार सदैव खुला रखता था। बिस्तर पर नींद लेते वक्त भी कभी किसी बात की चिंता ही नहीं करता था कि दरवाजा, खिड़की या अलमारी बंद करनी है। मैं कभी आधी रात के वक्त चौंक कर नहीं जागा करता था। पिछले साल से बड़े अनोखे तरीके से ये तमाम गड़बड़ आरंभ हुई। वो नम हवा में भीगी शीत ऋतु की एक शीतल रात्रि थी। मैं खाना खा चुका था, बिस्तर पर सुस्ताने की सोच रहा था कि वक्त कैसे गुजारा जाए। मैं उठकर कक्ष में टहलने लगा। कुछ थकान की अनुभूति हुई, लेकिन इसका कारण मैं नहीं समझ पाया। मैं चंद पलों में थककर पस्त हो गया। कोई किताब उठाकर पढ़ने की ताकत मुझ में नहीं रही। वर्षा की फुहार खिड़की के कांच भिगोने लगी थी। मुझे तीव्र बेचैनी महसूस हुई, बेवजह पैदा हुई, जैसे मैं शर्मिंदगी के दौरे से घिर गया हूं, जो आंखों में आंसू भर दे, जो एक ऐसी अनुभूति कराए कि किसी से, किसी ना किसी से भी बात करके मन हल्का कर लिया जाए। अकेलापन सालने लगा। कक्ष एकदम खाली खाली सा लगा। किसी गहरी हृदय विदारक तन्हाई में डूबने की अनुभूति हुई। क्या कर सकता था। नीचे बैठा तो पैर सुन्न होने लगे, तब चलने लगा, हाथ पीछे बांध लिए। बुखार चढ़ता महसूस हुआ, पूरी पीठ में एक सनसनी सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे रात की नम हवा कमरे में घुस रही हो। कमरे को गर्म करने के लिए अंगीठी सुल गई। जलती आग के सामने शरीर तापने बैठ गया, लेकिन पैर अकड़ने लगे। मैंने सोचा कि बाहर निकलकर टहलना ठीक होगा, किसी दोस्त के यहां चलकर गपशप की जाए। मैं बाहर निकल आया, तीन दोस्तों के घर गया, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर पक्का इरादा करके किसी ना किसी परिचित को तलाशने के लिए नगर के सुदूर इलाकों तक चला गया। लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। गीले फुटपाथ मध्यम प्रकाश से चमक रहे थे। कभी कभार अचानक बदन को कपकपाती धीमी हवा और सीने पर भारी गुजरती बारिश सड़क पर सी पसरती लगती थी। किनारे लगी धुंधली रोशनियों को परास्त करती महसूस हो रही थी। मैं उदास सा चला जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि आज बात करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। तमाम रास्ते के सभी कॉफी और चाय घरों में मैंने झांका। निराश चेहरे मेजों पर आसपास झुके हुए थे। उनमें प्याले उठाने तक की ताकत मालूम नहीं दे रही थी। अंधेरी रात को थककर पस्त होकर मैं घर लौटा। चौकीदार ने शीघ्रता से दरवाजा खोला। मैं चौंक गया क्योंकि अक्सर वो 11 बजे तक सो जाया करता था। मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अन्य किरायेदार अभी तत्काल ही ऊपर चढ़ा है। अक्सर बाहर जाते वक्त मैं द्वार बंद करके ताला लगा देता हूं, लेकिन मैंने अपने फ्लैट पर पहुंचकर देखा कि वो तनिक खुला हुआ है। मुझे बड़ा अनोखा लगा। मैंने सोचा कि शायद चौकीदार कोई चिट्ठी डालने आया होगा। तब मैं भीतर घुसा। अंगीठी भी जल रही थी। उसकी धीमी आंच से पूरे कमरे में हल्की हल्की लालिमा बिखरी हुई थी। एकाएक मेरी नजर अंगीठी के सम्मुख रखी कुर्सी पर पड़ी। वहां कोई शख्स पैर ताप रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मुझे क्षणिक भी भय नहीं लगा। मैंने मन ही मन खुद को भली प्रकार समझा लिया था कि वो मेरा कोई दोस्त है जो मुझसे मिलने के लिए आया है। चौकीदार ने उसे मेरे फ्लैट की जुड़वां चाबी दे दी होगी। मुझे दोस्त की महज पीठ ही दिखाई दे रही थी। मेरा इंतजार करते हुए शायद उसकी आंख लग गई होगी। मैं उसके सामने जा पहुंचा। उसका दायां हाथ नीचे लटका हुआ था और गर्दन झुकी हुई थी। कौन हो सकता है, मैं सोचने लगा। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसका कंधा हिलाया। तब मैंने ध्यान से देखा। ओह, मैं तो महज कुर्सी का हत्था ही हिला रहा हूं। वहां कोई नहीं है, कुर्सी खाली है। अब मैं चौंका, एकाएक पीछे हटा। मुझे लगा जैसे कोई भीषण विपत्ति मेरा इंतजार कर रही है। मैंने शीघ्रता से गर्दन मोड़ी। मुझे ऐसा लगा कि कक्ष में जरूर कोई दूसरा शख्स भी है। मैं फिर चकित, खौफजदा, थरथर कांपता हुआ कुर्सी की तरफ पलटा। लगा कि गिर ही पड़ूंगा। आखिरकार मैं एक इंसान हूं जिसमें कुछ हद तक तो आत्मविश्वास होता ही है। मैं तत्काल ही संभल गया। मैं समझ गया मुझे महज धोखा ही हुआ है। मेरा दिमाग वास्तव में सही सलामत है, बस नजरें धोखा खा गई हैं जिन्होंने ऐसा कल्पित दृश्य देखा। जो सामान्य लोगों को करिश्मा लगता है और जो दृष्टिगत तंत्र की स्नायविक गड़बड़ी का कारण होता है। आंखों में भरी थकान और हल्की सूजन की वजह से ऐसा ही हुआ होगा, दूसरी कोई और वजह नहीं है। मैंने बत्ती जलाई, अंगीठी की तरफ घूमा, लेकिन फिर सहम गया। ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से स्पर्श किया है। कक्ष में टहलने लगा, द्वार तक पहुंचा, उसमें दो ताले लटका दिए। दोबारा कुर्सी पर जा बैठा और तमाम घटना की तफसील से अपने दिमाग में व्याख्या की। मैं उठा, बत्ती बंद की और बिस्तर पर लेट गया। कुछ क्षण सही लगा, फिर मैंने अपनी गर्दन घुमाई और बुझी बुझी सी अंगीठी के मध्यम प्रकाश में यकायक ऐसा दिखाई दिया कि कोई कुर्सी पर झूल रहा है। शीघ्रता से उठकर मैंने तीली जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कुर्सी उठाकर दूर रख दी, बत्ती बंद कर दी और फिर मेरी आंख लग गई। अभी सोया ही था कि स्वप्न में फिर वही तमाम नजारा विस्तार से नजर आया, एकदम वैसा ही जैसा जागते हुए महसूस किया था। मैं नींद से उठ बैठा। अब जो बत्ती जलाई तो बंद नहीं की। तमाम रात बैठा ही रहा। दो दफा नींद का झोंका लगा और दोनों दफा वही नजारा दिखाई दिया। मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। पौ फटने की आभा खिड़की की शीशों पर दमकी, तब कहीं जाकर मैं सो पाया और फिर दोपहर तक सोता ही रहा। जब उठा तो लगा कि किसी बुरे ख्वाब से जागा हूं। अगले पूरे दिन मैं खुश मिजाज बना रहा। शाम को बाहर खाना खाया, थिएटर भी गया, लेकिन लौटकर घर के करीब पहुंचते ही बड़ी बेचैनी महसूस हुई, कहीं वो भीतर ही ना बैठा हो। यद्यपि मुझे उसका भय नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो आंखें फिर से धोखा खा जाएं, पुनः मति भ्रम हो जाए और फिर खौफ तारी हो जाए। मैं तकरीबन घंटे भर बाहर ही भटकता रहा। फिर खुद पर ही बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, खुद को धिक्कारा और फ्लैट के भीतर जाने के लिए आगे बढ़ गया। जोर से लात मारकर दरवाजा धकेला, गर्दन भीतर डाली, अंगीठी की तरफ देखा, कुछ नहीं था। ओह, बड़ी राहत महसूस हुई, बड़ी खुशी हुई। प्रसन्नचित और सधा हुआ चहलकदमी करता रहा, बीच बीच में चौंक कर घूम जाता। कक्ष के कोनों में पड़ती छायाएं कुछ विचलित कर देती थीं। मैं उस रात को ठीक से सो नहीं पाया। पूरी रात किसी आवाज का मुगालता होता रहा, तथापि वो नजर नहीं आया। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त था। उस पल के बाद से निरंतर खौफ की अनुभूति होती रही कि रात्रि में मैं तन्हा हूं। हर क्षण लगता कि वो वहां है, मेरे पीछे, अंगीठी के बगल में, पलंग के नीचे, कोई छाया कमरे में चलती, कोई पुरुष छाया, लेकिन मुझे पता था कि वो है नहीं। मैं अपनी सोच उससे कितनी ही दूर क्यों ना ले जाऊं, वो मुझ पर हावी ही रहता है, गायब है, लेकिन अंधेरे कोने में प्रत्येक परछाई में उपस्थित है। कितना हास्यास्पद, लेकिन कितना खौफनाक। उसका कोई निदान नहीं है। हां, यदि फ्लैट में दो शख्स हो तब वो बेशक वहां नहीं रह सकता, दो लोग हो तो वो वहां इसी कारण है क्योंकि मैं तन्हा हूं। आप सुन रहे थे कहानी अकेलापन, और इसे लिखा था गीदमोपासा में। आवाज दी नैनी दीक्षित ने।